मध्यम बनना। स्वच्छ का मतलब है जहां कुछ रोकता नहीं है, सूरज का या किरण या लाइट जब एकदम कोई रुकावट बिना वैसे कुछ किसी माध्यम से जब जाता है तो उसे स्वच्छ कहा जाता है। अंग्रेजी में उसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। और एक प्रकार पदार्थ है जिससे कुछ लाइट निकलता है बल्कि पूरा लाइट नहीं जाता है, कुछ रोक जाता है, कुछ उस माध्यम से निकलता है, उसको ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। और एक प्रकार की पदार्थ होता है जो जिसे ओपेक कहा जाता है, मतलब जिसे कोई लाइट पास नहीं करता। तो वैसे ही तीन प्रकार के व्यक्ति हैं, तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक है ओपेक जिससे कोई कुछ भी लाइट नहीं जाता है, वो माध्यम नहीं है, जो कुछ लाइट है वहां ही रुक जाता है। और एक प्रकार के मनुष्य होते हैं जिनसे कुछ जाता है और कुछ रोक जाता है। और एक किस्म के आदमी होते हैं जिनसे पूरा ही उन माध्यम से चले जाते हैं। तो ऐसे ही हम सब भगवान की संपर्क में वैसे ही हम हैं। कोई आदमी है जो जिनको मालूम है कि सब कुछ भगवान का है और वो सभी भगवान को ही दे देते हैं, उनको जो कुछ मिलता है सब भगवान को दे देते हैं। और दूसरे प्रकार के एक व्यक्ति होते हैं जो कुछ अपने लिए रखते हैं और कुछ भगवान को देते हैं। और एक प्रकार के व्यक्ति हैं जो सब कुछ अपने लिए रख लेते हैं और भगवान को कुछ नहीं देते। तो ये जो लास्ट कैटेगरी का जो है वो है भौतिकवादी, भौतिकवादी व्यक्ति। वो सोचता है कि सब कुछ मेरा है, मेरे लिए है और भगवान नहीं है, भगवान को देने का क्या जरूरत है, वो तो है नहीं। और है भी उससे इसका क्या जरूरत है, ये सब मेरा है। बल्कि जो भगवान को मानते हैं और सब कुछ भगवान को है ये समझकर जो भगवान को देते हैं वो है भक्त। और जो एकदम सब कुछ ही भगवान को दे देते हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं वो है शुद्ध भक्त। ये तीन प्रकार के आदमी होते हैं, भौतिकवादी, भगवत भक्त वैष्णव और शुद्ध वैष्णव या शुद्ध भक्त। भक्त बिना, भक्त हुए बिना गुरु नहीं हो सकते हैं। माध्यम हम कब बनेंगे, जब हम भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करते। माध्यम किसके लिए बनना, भगवान के लिए। माध्यम किन दोनों के बीच, माध्यम शिष्य और भगवान, इन दोनों के बीच है गुरु। शिष्य जो कुछ देते हैं गुरु उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं, और भगवान जो कुछ, भगवान के बारे में जो कुछ जानकारी वो शिष्य को देते हैं। इसलिए बताया गया है जो कृष्ण भक्त नहीं है वो गुरु नहीं बन सकते। यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। गुरु वो बन सकता है जो भगवान के भक्त है। भगवान के भक्त हुए बिना गुरु नहीं हो सकते। और गुरु कौन है? जो सब कुछ भगवान को देते हैं। शिष्य लाते हैं और वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। भगवान है ये विचार बहुत ही स्वाभाविक और सरल है। भगवान केवल है ही नहीं, भगवान पूर्ण रूप से हमारे देखभाल कर रहे हैं। हमारे जितने सारे जरूरतें हैं वो सारे भगवान ही निभा रहे हैं। हमें जो कुछ मिल रहा है भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। हमारे जरूरत क्या है? सबसे ज्यादा, सबसे गंभीर, सबसे अधिक जरूरत किसका होता है? तीन चीज का होता है, खाना पीना और श्वास लेना। खाना कहां से मिल रहा है? हमें खाना जो मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? रुपये से, रुपये के कारण हमको खाना मिल रहा है। इस सिलसिले में मैं बता रहा था कि आप अगर सहारा रेगिस्तान में गए, सहारा मरुभूमि में गए, सहारा डेजर्ट, डेजर्ट के बीच आप कितना भी रुपया दे, एक भी चपाती नहीं मिलेगा वहां। आप लाखों करोड़ों रुपया दे सकते हैं, एक ग्लास पानी भी नहीं मिलेगा। बल्कि खाना तो मिल रहा है, एकदम आसानी से मिल रहा है, चाहे मांगे बिना मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? देखिए खाना हमें कैसे मिल रहा है। सब्जी, अनाज का पैदा कैसे हो रहा है? अनाज देखिए, एक बीज जमीन पर गिरता है, उससे अंकुर निकलता है, पौधे निकलता है, और उसमें बहुत सारे फसल होता है। वो है हमारा खाना। हम खाते हैं चावल, गेहूं, जव, मकाई वगैरह, ऐसे ही मिलता है। और वो जो दाना है जो हम खा रहे हैं, अनाज के दाना, वो हर दाना में, एक एक दाना में एक एक पौधे हैं। और उस पौधे में कितने सारे अनाज हैं, और वो सारे अनाज के दाना में, बीज में एक एक पौधे हैं, और उन सारे पौधों में कितने सारे अनाज हैं। ये सप्लाई कौन कर रहे हैं? ये क्या अचानक हो गया, एक्सीडेंटली क्या ये पैदा हो रहा है? नहीं, जो बुद्धिमान है, विचारवान है, उनको सही रूप से पता चलेगा कि ये भगवान का दान है, भगवान दे रहे हैं हमें कृपा करके। पानी देखिए, पानी, यद्यपि पानी इस पृथ्वी का चार भाग के तीन भाग है पानी, एक भाग है जमीन, तीन भाग पानी है चार में से, बल्कि वो पानी हम खा नहीं, पी नहीं सकते हैं। वो समुन्द्र का जो पानी है नमकीन है, वो हम पी नहीं सकते। और फिर ये समुन्द्र कितने दूर है? हम मध्य प्रदेश में हैं, उज्जैन में हैं, लगभग कम से कम 1500 किलोमीटर दूर होगा समुन्द्र यहां से। बल्कि देखिए पानी का सप्लाई कैसे हो रहा है। सूरज का किरण से ये पानी बाष्पीभूत हो रहा है, बाष्प बन रहा है, बिकमिंग वेपर, और वो बादल बनता है। और बादल जगह जगह में चला जाता है हवा के कारण, हवा से वो जगह जगह में जा रहा है और उसका कंडेंसेशन हो रहा है, घनी घन बन जाता है वो बाष्प, और घन बन के वो बारिश के रूप में गिर रहा है। और वो जो पानी है वो पीने के लिए, नहाने के लिए, सब्जी पौधे अनाज उपजने के लिए वो पानी एकदम सही है। तो देखिए ये आयोजन कौन किया है, दिस वंडरफुल प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, सॉल्ट वाटर इज डिस्टिल्ड इनटू प्योर वाटर एंड सप्लाइड ऑल ओवर। देन लेट्स कंसिडर, एट लीस्ट विदाउट फूड वी कैन स्टे फॉर फ्यू डेज, विदाउट वाटर वी कैन सर्वाइव फॉर फ्यू डेज, बट विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स। That's the most essential ingredient for survival. And look at the oxygen supply. अच्छा ये खाए बिना, खाना खाए बिना हम कुछ दिन तक जी सकते हैं, पिए बिना भी एक दो दिन तक रह सकते हैं, बल्कि श्वास लेते बिना, श्वास लिए बिना हम कोई मिनट से के अधिक हम जी नहीं सकते। इतना जरूरी है ये ऑक्सीजन, और हम ऑक्सीजन को श्वास लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रक्रिया ऐसे चलता रहता था तो वातावरण में कोई ऑक्सीजन नहीं रहता और सारे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाता था। बल्कि ये क्या हो रहा है, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और पेड़ पौधे ने इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो बताइए इस आयोजन को कौन किए, इस आयोजन कौन किए हैं, किसी ने इस ऐसे आयोजन किए हैं या ऐसे एक्सीडेंटली हो गया है? जो बोलेगा ये एक्सीडेंट है वो असल में एकदम बेवकूफ है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे विचार नहीं करेंगे कि एक्सीडेंटली सब कुछ हो रहा है। अगर एक्सीडेंटली नहीं हो रहा है तो किनके आयोजन से ऐसी सुंदर व्यवस्था हो चुका है, कौन किए हैं? अगर हम जानना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे विवरण वर्णन है शास्त्र में, हमारे शास्त्र में, और उस शास्त्र से जब हम उस इंफॉर्मेशन हम जब ग्रहण कर रहे करते हैं तो देखते हैं कि इन सब के पीछे है भगवान, परमेश्वर भगवान, उन्होंने ही हमको सब कुछ दे रहे हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान के हैं। और जत किंच जगत्तां जगत, और भगवान सबके लिए जितने सारे जरूरतें हैं निभा रहे हैं। जो भी हो, जितना भी जरूरत हमको हमारा है, भगवान उसको निभा रहे हैं, उस भगवान उसको सप्लाई कर रहे हैं। देखिए चाहे हम एक छोटे चीते हैं, हमारा प्रयोजन इतना छोटा है, भगवान हमें दे रहे हैं। हम अगर एक हाथी हैं जिसको हर रोज कोई 100 किलो का खाना जरूरत होता है, उसके लिए भी भगवान दे रहे हैं। भगवान सबको, सबके लिए पूर्ण व्यवस्था कर चुके हैं। इसलिए इस जगत में, इस भौतिक जगत में कभी कुछ कमी किसी को नहीं होता है। चाहे हम हाथी हो या चीते हो, एक मच्छर हो या एक कीड़ हो, सबको भगवान सब कुछ दे रहे हैं। जत किंच जगत्तां जगत, यहां एक विचार हमको करना चाहिए कि अभाव इस भौतिक जगत में, इस प्रकृति में किसी प्रकार की अभाव किसी को भी नहीं है। केवल अभाव केवल मनुष्य समाज में ही है, पंछी समाज में, पशु समाज में, मछली समाज में, कहीं भी कोई अभाव नहीं है। स्केयरसिटी, किसी प्रकार का स्केयरसिटी नहीं, केवल मनुष्य समाज में ही है। क्यों? क्योंकि भगवान सब कुछ दे रखे हैं सबके लिए, बल्कि मनुष्यों ने खुद इस अभाव को तैयार कर रहे हैं, मनुष्य ने ही कर रहे हैं। भगवान दे चुके हैं सबके लिए सब कुछ। कैसे? देखिए, एक बैग चावल आप रात को रास्ता में रख दीजिए, सुबह कुछ पक्षी पंछी आएंगे, जितना जरूरत है खा के चले जाएंगे। इसके बाद कोई गाय भैंस आएंगे, उसको भी जितना जरूरत है वो खा के चले जाएंगे। बल्कि जब एक इंसान आएगा, मनुष्य आएगा, तो वो क्या करेगा? वो पूरा बैग उठा के लेके चले जाएंगे। तो इसलिए ही मनुष्य समाज में अभाव है। हमारे जरूरत के बारे में नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, मेरा लड़का को क्या होगा, लड़की का क्या होगा, मेरा पोते का क्या होगा, उसके प्रपोते का क्या होगा। ये हम सारे व्यवस्था हम करने का कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए क्या हो रहा है, जो भगवान हमारे लिए जो दे चुके हैं उससे हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। हम दूसरे के लिए जो दिया गया है, भगवान जो दूसरे के लिए जो दे रहे हैं, उसको हम चुरा के अपना गोदाम में रखते हैं। और इसलिए ही मनुष्य समाज में ये ऐसी अभाव हो रहा है। बल्कि हम अगर समझ लेते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है और भगवान सब कुछ दे रहे हैं, तब हमारा मनोभाव ऐसा नहीं बनेगा, तब हमारा मनोभाव ऐसा नहीं होगा। हम अगर भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं तो हम देखेंगे कि भगवान हमको सब कुछ दे रहे हैं, तो ऐसे होल्डिंग करने का, जमाने का क्या जरूरत है। भगवान के ऊपर निर्भर करना ही सही मार्ग है। और देखिए, जब भगवान नहीं, भगवान चाहेंगे कि हमको कुछ खाना ना मिले, तो चाहे हमारे पास कितने भी रुपए हो और कितने भी खाना हो, हम खा नहीं सकेंगे। हम पी नहीं सकेंगे, मृत्यु के समय हम कुछ खा नहीं सकेंगे, जबकि हमारे पास कितने सारे खाना हो सकते हैं, पी नहीं सकेंगे और श्वास भी नहीं ले सकेंगे। चाहे हम कितना भी रुपया दे, मेरा बैंक में हजारों करोड़ों रुपया हो सकता है, बल्कि उस समय वो हजारों करोड़ों रुपया देके हम एक दम सांस नहीं ले सके। तो ये विचार सही रूप से करना चाहिए। जो करते हैं वही बुद्धिमान हैं, और जो इस विचार के मुताबिक चलते हैं वही सही आदमी है। इसलिए दो चीज हमको याद रखना, सब कुछ भगवान के हैं और भगवान हमें सब कुछ दे रहे हैं, इसलिए सब कुछ भगवान को ही वापस देना चाहिए। मैं जो ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम के बारे में कह रहा था, इसका मतलब ये है कि सब कुछ भगवान के हैं, तो हमें जो कुछ मिल रहा है तो सब कुछ भगवान को ही अर्पण करना चाहिए, भगवान को ही निवेदन करना चाहिए, भगवान के ही भोग में लगाना चाहिए। और जब हम भगवान के भोग लगाते हैं तब हमें किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अभाव नहीं हो सकता है। भगवान को हम थोड़ा कुछ देते हैं और भगवान उसको 100 गुना, 1000 गुना, 1000000 गुना वापस देते हैं। सुदामा विप्र ने भगवान से मिलने को गया द्वारका। सुदामा विप्र का रहना था पोरबंदर, पोरबंदर से द्वारका गए। भगवान के लिए कुछ, कृष्ण के लिए कुछ लेकर गए थे। क्या लेकर गए थे? थोड़ा चिप्ड राइस, पोहा, थोड़ा सा पोहा ले गए। और जब वहां जाके जब देखा कि भगवान का कितना वैभव, दोनों ने भगवान कृष्णा और सुदामा दोनों ने ही यहां पढ़ी थे फ्रांदीपानी मुनि के आश्रम में। आश्रम में तो गुरु के आश्रम में थे, दोनों की दोनों ने बराबर ही थे। सुदामा ने सुना था कि कृष्णा ने द्वारका का अधीश्वर बन गया, राजकुमार है श्री कृष्ण, और द्वारका का वैभव, बल्कि जब जाकर देखा तो एकदम आश्चर्य हो गया, कितना सारे वैभव भगवान का। बल्कि भगवान जब उनको मिला तो अपने गले लगा लिया और बचपन के सारे का समय का याद करने लगा। तो बाद में कृष्ण ने बोला, सुदामा तुम मेरे लिए जरूर कुछ लाए हो। सुदामा शर्मा रहा था कि कृष्ण को मैं कैसे ये थोड़ा पोहा दूंगा, वो भी सूखा पोहा, कैसे मैं दूंगा। बल्कि भगवान खुद मांग के लिया है, क्या लाया है? तो शर्माते हुए दिखाया क्या लाया। बल्कि भगवान क्या बोला, ओ सुदामा कितना दिन हुआ मैं पोहा नहीं खाया, पोहा नहीं मिला, यहां सब कुछ मिल रहा है, पोहा नहीं मिल रहा है, वो भी सूखा पोहा। तो भगवान एक मुट्ठी ले लिया, दो मुट्ठी ले लिया, तीन मुट्ठी जब लेने गया तो रुक्मिणी देवी रोक दिया भगवान को, बोला तुम्हारा दो मुट्ठी लेने के कारण मेरा सारे दौलत खत्म हो गया, मैं बैंकक्रप्ट हो गया, और कुछ देने का और मेरे पास नहीं रहेगा। तो देखिए, भगवान को जब हम देते हैं और भगवान जब लेते हैं तो इसका परिणाम ऐसा होता है। और भगवान कब लेते हैं? भगवान लेते हैं, ग्रहण करते हैं, कब ग्रहण करते हैं? जब हम प्रेम के साथ देते हैं, भक्ति के साथ देते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयम् योमे भक्ता प्रजच्छति। भगवान कह रहे हैं गीता में, जो व्यक्ति थोड़ा पत्र, पत्ते, पुष्पम फूल, फलम फल, और तोयम पानी, जो में भक्ता, भक्ता का मतलब भक्ति के साथ, प्रजच्छति देते हैं, यो में भक्ता प्रजच्छति, तद अहम उसे मैं भक्तिर उपरहितम अश्नामी, उस भक्ति को मैं ग्रहण करके मैं खाता हूं। अश्नामी का मतलब है खाता हूं, भगवान केवल ग्रहण ही नहीं करते, खाते हैं। अश्नामी प्रजतात्मना, क्योंकि वो उस अर्पण भक्ति के साथ हुआ है। भक्ति के साथ मतलब प्यार के साथ, जब प्यार के साथ हम भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान ग्रहण करते हैं, और जब भगवान लेते हैं तो भगवान कैसे लेते हैं? पूर्ण रूप से लेते हैं। और कैसे भगवान उसको प्रतिदान देते हैं? एक तो सुदामा का ये है वर्णन है, इसे बहुत सारे वर्णन है शास्त्रों में, और एक वर्णन है फल वाली। फल वाली, एक फल वाली फल बिक रही, तो कृष्ण तो उम्र उस समय 5 साल की थी, 5 साल की थी। तो कृष्ण ने देखा कि उस समय तो रुपया देके खरीदते नहीं, उस समय बार्टर होता था, विनिमय होता था, चावल या गेहूं के गेहूं देकर फल लेते थे ऐसे, और फल देकर गेहूं लेते थे, वैसे बार्टर सिस्टम था उस समय। तो कृष्ण थोड़ा सा गेहूं के दाना, चावल के दाना वैसे हाथ में लेकर गए, छोटे हाथ, छोटा छोटा हाथ था, और उस हाथ में कितना गेहूं लिया होगा, लेके फल वाली को देने को गया, और जाते वक्त वो हाथ से आधा गिर ही गया था, बल्कि वो फल वाली ने कृष्ण को देखकर उनका मन में इतनी सुंदर भावना आया, इतनी मधुर वात्सल्य प्रेम का जागरण हुआ, जागृत हुआ, कृष्ण के दो हाथ भर के फल दे दिया, दो छोटे छोटे हाथ में जितने सारे फल कृष्ण ले सका वो फल वाली उसको फल दे दिया, और देते ही देखा उसका फल का जो टोकरी था वो फल का टोकरी मणि रत्न से भर गया, अनमोल मणि रत्न से वो फल की टोकरी भर गया। केवल वही नहीं, जब घर में वापस आया तो देखा कि उसका जो झोपड़ी था उस जगह में एक विशाल प्रासाद बन गया है, और उनका पति निकल आए हैं राजा जैसे राज वेश पढ़ के, सर पे मुकुट, चारों और बॉडीगार्ड हो उनको रिसीव करने आया। तो देखिए भगवान को थोड़ा कुछ देने से उसका फल कैसा होता है। हाँ, सुदामा विप्र के बारे में मैंने बताया, ये जो रुक्मिणी देवी अर्थात महालक्ष्मी सोचा कि अगर और कुछ कृष्ण देंगे तो उनको प्रतिदान देने के लिए उन्होंने समर्थ नहीं बनेंगी। तो सुदामा जब घर आया तो क्या देखा, सुदामा जब घर आया देखा वहां पर एक विशाल प्रासाद, वो केवल प्रासाद ही नहीं, उस प्रासाद का दीवार सोना से बना हुआ था, प्रासाद की बाहर जो दीवार था, बाउंड्री वॉल, दैट बाउंड्री वॉल वॉज मेड विथ सॉलिड गोल्ड, and what to speak of the palace itself. So this is how Krishna responds. Just consider 3 handful of chip rice. That's all Krishna took, and the return was inconceivable, akalpaniya. Bhagwan deti hai rice. इसलिए भगवान के लिए सब कुछ करना चाहिए, जो कुछ है भगवान को अर्पण करना चाहिए, और भगवान के स्वच्छ माध्यम बनना चाहिए। अगर हम भगवान को स्वच्छ माध्यम बनते हैं तब भगवान की कृपा पूर्ण रूप से बरसने लगेगा। मैं जो कह रहा था आज की ये दिन आप लोग गुरु पूजा कर रहे हैं, मैं पहले बताया था कि गुरु कौन है। असल में गुरु है, गुरु शब्द का अर्थ है जो अज्ञान के अंधकार दूर करते हैं, गुरु अज्ञान के अंधकार दूर करने वाला। तो अज्ञान के अंधकार दूर करने वाला असल में कौन है, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है आदि गुरु। कृष्ण ने ही अज्ञान अंधकार इस भौतिक जगत से दूर किए थे, और जो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उस ज्ञान प्रदान करते हैं या उस अंधकार को दूर करते हैं वो भी गुरु के रूप में उनको माना जाता है। तो ऐसे गुरु का मतलब क्या है, जो स्वच्छ माध्यम है, जो सब कुछ भगवान को देते हैं और जिनकी माध्यम भगवान का कृपा बहती है, वही है सदगुरु। गुरु कभी नहीं सोचता कि मैं गुरु हूं, या शिष्य सोचता है कि ये मेरे गुरु हैं, बल्कि गुरु कभी नहीं सोचते हैं कि मैं गुरु हूं। गुरु सोचते हैं कि मैं मेरा गुरु का शिष्य हूं, मैं शिष्य हूं, मैं गुरु नहीं। और मेरा सौभाग्य ये है कि हमें एक महान सद्गुरु प्रभुपाद जैसे एक महान सद्गुरु हमें भगवान की कृपा से मिला है। और मेरा कर्तव्य है कि आप लोग जो कुछ हमें दे रहे हैं उसको भगवान को ही अर्पण करें, भगवान को ही सेवा में लगा। और जब ऐसे सही रूप से अगर हम कार्य कर सकते हैं तो भगवान की कृपा मिलेगा, और भगवान की कृपा से ही सब कुछ संभव होता है। भगवान की कृपा से अद्भुत कार्य संपन्न होता है। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट फेज इज ओके, आस्क देम टू ब्रिंग इट, आई कैन स्पीक इट, टेल देम टू ब्रिंग इट। हरे कृष्णा। और एक बात मैं बताया था उस समय पहले जो मैं अंग्रेजी में लास्ट से टाइम बोला था कि मुझे बहुत खराब लगता है कि जब आप इतने दूर से आते हैं और मैं आपके लिए समय नहीं दे सकता हूं। मैं जानता हूं कितने आशा लेकर आप आते हैं, आप चाहते हैं कि मैं मेरे साथ बैठ के कुछ बातें करेंगे, कुछ संग मिलेगा आपको। बल्कि इस बार तो सही रूप से वो संभव नहीं हुआ, और कल भी मैं निकल रहा हूं। अगर दो तीन दिन मैं रहता था तो थोड़ा एसोसिएशन का मौका मिलता था, बल्कि इस बार मैं कल भी निकल रहा हूं। और ऐसे इस रूप से मैं तो देखता हूं कि ये नहीं होता, संग सही रूप से नहीं होता। तो इसलिए मैं सोचा कि अगले बार हम एक हफ्ता भर एक अनुष्ठान रखेंगे, एक प्रोग्राम रखेंगे, और उस समय हम ऐसे प्रोग्राम रखेंगे कि हम सही रूप से संग आध्यात्मिक मार्ग में, आध्यात्मिक स्तर में रहकर संपर्क कर सकेंगे। हरे कृष्णा। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।